ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
भारतीय न्याय संहिता के लागू होने का समय करीब आ रहा है, इसके प्रावधानों को लेकर लोगों के बीच काफी जिज्ञासा है। इसी क्रम में आज हम भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे। आशीष जी, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
थैंक यू।
आशीष जी, सबसे पहले बताएं कि भ्रष्टाचार को लेकर जो पहले के प्रावधान थे और जो अभी नए प्रस्तावित प्रावधान हैं जो लागू होने जा रहे हैं, उनमें क्या बड़े अंतर हैं? और वास्तव में तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि पहले के प्रावधान क्या थे और अभी नए प्रावधान क्या हो सकते हैं।
भ्रष्टाचार अपने आप में इंडिया में स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके लिए हमारा एक डेडिकेटेड एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ज्यादातर जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए प्रावधान हैं वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कंटेंट हैं। जहां तक बीएनएस की बात है, बीएनएस एक जनरल लॉ है जो कि आ रहा है, आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है। इसका रोल एक सप्लीमेंट्री रोल रहेगा। भ्रष्टाचार से जुड़े ज्यादातर जो अपराध रहेंगे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ही डील हुए होंगे। अब देखिए, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए दो तरीके के पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सरकारी ऑफिसर को, गवर्नमेंट ऑफिसर को घूस ऑफर करता है और उससे कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, वो एक करप्शन का पार्ट हो सकता है। दूसरा पहलू इसी ऑफेंस का तब होता है जब वो सरकारी अधिकारी किसी भी इंडिविजुअल से कुछ बेनिफिट लेते हुए उसको अनड्यू एडवांटेज प्रदान करता है। तीसरा एक भ्रष्टाचार का पहलू ये हो सकता है कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी किसी तरीके के ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है जहां पर वो पब्लिक एक्सचेकर को लॉस कॉज कर रही है। तो ये सारे प्रावधान हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वेल कवर्ड हैं। लेकिन जहां तक भारतीय न्याय संहिता की बात है, इसमें चैप्टर 10 जो है वो पब्लिक ऑफिसर्स से रिलेटेड ऑफेंसेस से डील करता है। दो इसके महत्वपूर्ण ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि भ्रष्टाचार निवारण में शायद उपयोगी होंगे आने वाले दिनों में। पहला आपका सेक्शन 202 बीएनएस का, वो ये कहता है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर किसी ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो कि वो लीगली अलाउड नहीं है इंटर करने के लिए, तो ऐसी ट्रेडिंग एक्टिविटी को वायलेशन माना जाएगा कानून का। दूसरा सेक्शन 203 है जो इस चीज को इंश्योर करता है कि कोई पब्लिक ऑफिसर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज नहीं करेगा या किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी की बिडिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा जो कि वो लीगली प्रोहिबिटेड है इंटर करने के लिए। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं जो कि करप्शन से लड़ने के लिए शायद बीएनएस में महत्वपूर्ण रूप से जोड़े गए हैं।
अभी जैसे आपने कहा पब्लिक ऑफिसर्स, क्योंकि अभी हम हाल में हमने देखा है, पहले जब भी भ्रष्टाचार की बात आती थी तो हमेशा मतलब है कि सरकारी जो अफसर हैं, कर्मचारी हैं, सिर्फ वो इस दायरे में आते हैं। पब्लिक ऑफिसर्स की परिभाषा में कौन कौन आता है?
पब्लिक ऑफिसर्स की परिभाषा में अगर जिस पर्टिकुलर आप कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसपे उन्होंने पॉलिटिशियंस जो पार्लियामेंटेरियंस है अगर वो घूस लेते हैं तो वो क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, इस क्वेश्चन को सेटल किया है। पहले की सिचुएशन ये थी कि अगर पार्लियामेंटेरियंस इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको पीसी एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया था, लेकिन अब पब्लिक ऑफिसर्स की डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया है। हर वो व्यक्ति जो एक पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है वो एक सरकारी अधिकारी हो सकता है या एक पॉलिटिशियन हो सकता है जो फॉर द टाइम बीइंग किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आएंगे।
हमने अभी पहले भ्रष्टाचार की बात की है और उसी तरह से अभी आर्थिक अपराधों के लिए जो प्रावधान है उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
आर्थिक अपराधों को ब्रॉडली दो तरीके से देखा जा सकता है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम इनको बांट सकते हैं। पहला ऐसे जो आर्थिक अपराध हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए जनरल लॉज बनाए गए हैं, जैसे आपकी चीटिंग, फॉर्जरी हो गई, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। फिर एक दूसरी कैटेगरी आर्थिक अपराधों की आती है जो कि स्पेशल कैटेगरी है और उसके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। जैसे आपने करप्शन की ही बात करी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया या कॉरपोरेट फ्रॉड्स हो गए, कंपनीज एक्ट में डील किए गए हैं, सेबी एक्ट में डील किए गए हैं, कुछ ऐसे अपराधी हैं जो इकोनॉमिक अपराधों को करने के बाद देश से बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट भी पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया है। तो अगर आप इस तरीके से कैटेगराइज करके देखेंगे तो बीएनएस जिन चीजों को प्रोवाइड करता है वो मोस्टली आपकी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, फॉर्जरी हो गई, चीटिंग हो गया। इस तरीके के प्रावधानों को एक पुराने कानून से आईपीसी से कहीं ना कहीं इनहेरिट भी किया गया है, इन प्रोविजंस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर अपराधों में मिलने वाले पनिशमेंट की सीमा को भी बढ़ाया गया है। अब जहां तक स्पेशल कैटेगरी की बात है, स्पेशल कैटेगरी में आप देखिए जिन मुख्य कानूनों की हम बात करते हैं वो होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। जब कोई सरकारी अधिकारी किसी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व होता है वो भी एक फाइनेंशियल क्राइम है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसको डील करता है। जब एक प्रेडिकेट ऑफेंस होने के बाद उस काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से अगर किसी कंपनी में फ्रॉड होता है तो कंपनीज एक्ट में उससे जुड़े हुए प्रोविजंस हैं। तो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क हमारा इंडिया का इस तरीके से बटा हुआ है कि जनरल लॉज जो कि हमारा आज की डेट में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता होने वाली है उसमें जनरल इकोनॉमिक ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट प्रोवाइड कराया गया है, वहीं पर स्पेसिफिक इंस्टेंसेस जो हैं उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भारतीय न्याय संहिता में इंट्रोड्यूस की गई है और इसके लिए सरकार साधुवाद की पात्र है, ये पहली बार ऐसा भारतीय इतिहास में हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को एक सेंट्रल एक्ट में इंक्लूड किया गया है एक ऑफेंस के रूप में। अभी तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होते थे उनके लिए डिफरेंट स्टेट लॉस थे, जैसे हमने मको का काफी एक चर्चित लॉ रहा है, लेकिन आजकल अगर आप देखें आर्थिक अपराधों का जो नेचर हो गया है क्योंकि हम हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं तो ये अपराध बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। आप डेली इस चीज को महसूस करते होंगे कि आपको तमाम एसएमएसेस आ रहे हैं, आपको फिशिंग ईमेल्स आ रहे हैं, आजकल एक बहुत ही कॉमन एक फ्रॉड प्रेवलेंट है, आपको कस्टम ऑफिसर के नाम से फ्रॉड होता है और दूर क्यों जाना, मुझको लगता है पिछले एक हफ्ते में 2-3 कॉल्स कस्टम के नाम से मुझको खुद ही आई होंगी जहां पर एक बार मुझको ये कहा गया कि आपका एक कंसाइनमेंट मुंबई में कस्टम ने होल्ड करके रखा है और उसमें आरडीएक्स है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता जिसको कानून की शायद उतनी समझ ना हो तो वो पैनिक सिचुएशन में चला जाता। तो इन अपराधों का एक जो प्राइम मोटिव होता है आप में पैनिक इंस्टिगेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं और उसके बाद आपको एक ऐसी चेन में फंसाने की कोशिश करते हैं जहां पर आपसे पैसों का एक्सट्रॉशन होता है, बार बार आप उनको पे करते हैं। तो ये सारे अपराध आजकल संगठित अपराधों के रूप में हो रहे हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में। तो भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराधों को पहली बार एक ऑफेंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस को एक एक्सप्लेनेशन के रूप में उसमें ऐड किया गया है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस आपके संगठित अपराधों की श्रेणी में आएंगे। ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में शायद इन प्रोविजंस का इस्तेमाल करते हुए हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो इन संगठित आर्थिक अपराधों से डील करने में बेटर इक्विप्ड होंगी।
अभी तो जो आपने बताया ये जो फ्रॉड कॉल्स और इस तरह के जो आर्थिक अपराध हैं, लेकिन एक उससे पहले आपने उल्लेख किया मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्योंकि ये भारत में हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और अक्सर हम देखते हैं ये समाचारों में भी छाया रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले कई सारे आते रहते हैं, तो इसको लेकर पुराने और नए प्रावधानों के बीच में क्या प्रमुख अंतर है?
नए प्रावधान हम ये नहीं कह सकते कि बीएनएस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो मुख्य कानून हमारे देश में है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है। अगर आप इस पूरी प्रोसेस को देखें कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरीके से काम करती है, सबसे पहले एक ऑफेंस होता है और उस ऑफेंस की वजह से आपके पास कुछ इलीगल गेन्स होते हैं, कुछ पैसा आता है, उस ऑफेंस को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में प्रेडिकेट ऑफेंस के रूप में डिफाइन किया गया है। अगर कोई ऑफेंस प्रेडिकेट ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, शेड्यूल में आता है, और उस पैसे को आने के बाद जब उस इलीगल तरीके से ऑब्टेन किए गए पैसे को उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहां पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एप्लीकेबल होता है। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की भी जो प्रोसेस होती है काम कैसे करती है, देखिए इसके 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली स्टेज है आपकी प्लेसमेंट, सेकेंड इज इंटीग्रेशन, थर्ड इज आपकी वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। अब लेयरिंग एंड प्लेसमेंट। अब आपने कोई अपराध किया एग्जाम्पल के लिए जो कि एक आईपीसी के तहत एक डिफाइंड अपराध था अभी तक, या अब बीएनएस के तहत एक अपराध के रूप में डिफाइंड है, वो आपका प्रेडिकेट ऑफेंस कहलाएगा। उस प्रेडिकेट ऑफेंस से अगर आपको कुछ पैसे गेन होते हैं और उस पैसे को फिर आप व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो पीएनएस के साथ साथ आपके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। और इस तरीके से हम देखेंगे जो व्यापक एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है हमारे देश में लॉज का इकोनॉमिक ऑफेंस से डील करने का, वो सब एक साथ में साइमल्टेनियसली मिलकर काम कर रहे होते हैं। देखिए, इन नए कानूनों के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी रहा है कि कहीं भी ड्यूप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए लॉज में, क्योंकि अगर किसी लॉ को किसी स्पेशल किसी ऑफेंस को किसी स्पेशल लॉ में डिफाइन किया गया है और पनिशेबल बनाया गया है, और सेम ऑफेंस को किसी दूसरे लॉ में भी पनिशेबल बनाया गया है और उसको ऑफेंस के रूप में डिफाइन किया गया है, और इस तरीके की जब भी ओवरलैपिंग होती है तो कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को लीगल हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। तो बीएनएस को लाने के पीछे एक उद्देश्य ये भी रहा है कि डिफरेंट लॉज में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जहां पर हमारे स्पेशल लॉज हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को जनरल लॉज जो कि अभी तक आईपीसी था और अब भारतीय न्याय संहिता है, उनसे हटाया जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भारतीय न्याय संहिता एक सही दिशा में उठाया गया एक सही कदम है।
जैसा अभी आपने कहा कि सब कुछ सुचारू बनाना या कहीं पर ओवरलैपिंग ना हो, इससे बचने के उपाय किए गए हैं, तो अगर हम देखें तो क्या जो अब नए प्रावधान हैं अलग अलग हेड्स के तहत जो भी आप कहें, उनसे क्या हमारी एजेंसीज के कामकाज को सुचारू बनाने में सहायता मिलेगी?
डेफिनेटली, ये एक प्राइम मोटिव भी था। देखिए, नए कानून क्यों लाए गए, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और एक रीजन उसमें यह भी था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे हमने अभी बात करी, एक किसी ऑफेंस को किसी पर्टिकुलर एक्ट में डिफाइंड और पनिशेबल बनाया गया है और सेम ऑफेंस को किसी दूसरे एक्ट में डिफाइन किया गया है और पनिशमेंट देने की बात करी गई है, और जो पर्टिकुलर एफआईआर उस इंस्टेंस में लागू होगी उनमें किन किन सेक्शंस को लगाना है, किन किन ज्यूरिसडिक्शन में वो चीजें एप्लीकेबल होंगी, किसी दूसरे सेक्शन में अगर किसी को रिलीफ मिल रही है या किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में किसी उस अपराधी को रिलीफ मिल रही है, उसके इम्प्लीकेशंस उस दूसरे एक्ट में जो सिमिलर प्रोविजंस हैं उस पर क्या होंगे, तो ये काफी लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज को पैदा करती हैं ऐसी चीजें ओवरलैपिंग। तो एक ये सही दिशा में, मैं फिर कहूंगा सही दिशा में उठाया हुआ सही कदम है, जहां पर हम डिफरेंट लॉज के बीच में जो ओवरलैपिंग है उस ओवरलैपिंग को कम से कम रखें, जिससे कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने लॉज क्लियर हों, किन प्रावधानों के तहत केस रजिस्टर करना है और आने वाले समय में कोर्ट में क्या प्रोसेस अडॉप्ट करनी है, चार्जशीट किन सेक्शंस में फाइल होनी है, तो इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसेस, चार्जशीट फाइलिंग की पूरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड हो जाती है। और इसको हम देखेंगे कि आगे इससे हमारी जांच एजेंसियों का काम काफी स्मूथ हो जाएगा।
जैसा आपने कहा कि जांच एजेंसीज को सहूलियत होगी इन नए प्रावधानों से, और इससे आगे चल के अदालतों को भी सहूलियत होगी, और अगर हम देखें तो इस देश में हमारे पूरी न्याय व्यवस्था में सबसे ज्यादा बात यही होती है कि अदालतों में वक्त बहुत लगता है। क्या जो हम देख रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जो प्रस्तावित बदलाव हैं, उनसे अदालतों के कामकाज को बेहतर बनाने में और लोगों को जल्दी न्याय दिलाने में मदद मिल सकती है?
जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे सहमत हूं कि ये सारी स्ट्रीमलाइनिंग एंड कंसोलिडेशन जो हो रहा है इन नए तीन क्रिमिनल लॉज के आने से, उससे कहीं ना कहीं एक जो त्वरित न्याय की अवधारणा है उस पर कहीं बल मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ देखिए, इस मौके का इस्तेमाल मैं इस चीज को भी बताने के लिए करूंगा आपके श्रोताओं को कि एक जनरल एक सेइंग है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन अगर आप न्यायिक प्रक्रिया को देखेंगे तो ये भी उतना ही ठीक है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। तो हम इस तरफ मान सकते हैं कि जहां पर एक तरफ पूरी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होने से न्याय में थोड़ी जो पेंडेंसी है उसमें कमी आएगी, लेकिन साथ ही साथ इस चीज का भी ध्यान इन कानूनों में रखा गया है कि जस्टिस हरीड आपका जस्टिस बरीड में कन्वर्ट ना हो जाए।
आशीष जी, सार्थक चर्चा और बहुमूल्य जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
अभी आप सुन रहे थे भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आशीष कुमार पांडे और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।